Oh. सुधीजनों देवियों, आप सबको भारतवर्ष के इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बहुत बधाई हो। यद्यपि आप उस देश में नहीं रहते हैं, उसके बावजूद जैसे बड़े होने पर आप अपने मां बाप के साथ नहीं रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपके मां बाप नहीं होते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने काम के लिए, अपने अपने जीवन की जीविका के लिए दुनिया भर में कहीं भी रहें, उसकी मां, उसकी मातृभूमि कभी बदलती नहीं है। इसी तरह आप कहीं भी रहें, प्रोफेशनल रीजन से आपकी जो हमारी जो एक हर ह्यूमन बीइंग की जो एक नेचर होता है, उसको एक देश के साथ जो अटैचमेंट है, जो मातृभूमि के साथ, वो कहीं नहीं जाती है। इसलिए आप को कोई बीच में आपके मन में कोई इसी तरह का द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई ड्वलिटी नहीं होनी चाहिए। आप यहां अमेरिका में इजरायली लोग, हिब्रू लोग कितने सालों से हैं, 300-400 साल से हैं, जो ज्यूश लोग हैं। और सारे अमेरिका में सब जानते हैं ज्यूश लोगों की श्रद्धा अपनी इजरायल के प्रति है। Although they live in America for more than 200 years, 300 years, no one blames them why they have their faith in Israel. So it's only Indian people who ask question about their self. No other national ask them. क्योंकि हम भारत में रहते हुए भी हमें भारत के प्रति थोड़ी कम श्रद्धा रहती है वैसे ही, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो ब्रिटिश अमेरिकन ने, जर्मन अमेरिकन ने, फ्रेंच अमेरिकन ने, अफ्रीकन अमेरिकन ने 400 साल से यहां पर है, 300 साल से पीढ़ियां बदल चुकी है, 6-6 पीढ़ियां, 8-8 पीढ़ियां बदल चुकी है, अभी भी उनके अपने देश के प्रति भाव है, गर्व है, और अमेरिकन सिस्टम सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए कोई हेजिटेशन ना रखें, जिस चीज के आपके आपको प्यार है उस चीज को खुलकर बोलने की। हाँ ठीक है कि नेशनलिज्म का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी दूसरे की बुराई करो, किसी दूसरे देशों की 2-4 गालियां देने से कोई पैट्रियोटिक नहीं बनता है। अगर आपको किसी देश के प्रति श्रद्धा है, वो आपके अपने देश है या दुनिया के किसी भी देश प्रति, यू हैव दैट राइट टू डू इट। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब उसके कारण आप दूसरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल खुल के आप अपनी भावना को रखें, व्यक्त करें। अरे ओपन सोसाइटी, एवरीवन वेलकम्स यू, डोंट वरी अबाउट दैट। कौन क्या कहेगा, आप अपने देश की इंडिपेंडेंसी मना रहे हैं। ऑफिशियली आप किसी भी देश के सिटीजन बने, इट्स ए प्रोफेशनल मजबूरी है, पर भावना जहां है तो क्या करें, दिल को थोड़ी काट के फेंक देंगे क्योंकि आप किसी देश में प्रोफेशनल रीजन के कारण सिटीजनशिप बनते हैं। तो है हमारे दिल में भावना है, तो उसमें उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं। देवियों सज्जनों, आपको दोबारा भारत के इस स्वतंत्रता दिवस पर अभिनंदन करते हैं। आज हम कल हमने भारत के इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया। किसी भी देश की स्वतंत्रता हो, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए प्राउड फील करने की बात होती है। जब देश की स्वतंत्रता होती है तो किसी जमीन की टुकड़े की आजादी नहीं होती है, उस जमीन में रहने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आजादी होती है, जो अपनी इच्छा से जी सकते हैं, अपनी इच्छा से अपनी भाषा को बोल सकते हैं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, अपने हिसाब से अपने देश को चला सकते हैं, अपने जो इंडिजिनियस कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो फूड है, जो कुछ है, जो इंडिजिनियस थॉट है, उसको वो प्रमोट कर सकते हैं जब कोई देश आजाद होता है। इट्स नॉट अबाउट ए कंट्री, नेशन, द पीपल ऑफ दैट कंट्री, दे बिकेम फ्रीडम, उनको आजादी मिलती है। आजादी कोई कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना मिले तो चलेगा, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा, एक सिंगल सेंटिएंट थिंग, इवन आपके पेड़ भी, अगर आप इनको वो इंडिपेंडेंसी नहीं दोगे, जैसे वो जीना चाहते हैं वैसा आप जीना नहीं दोगे, बाकी आप उनको सारी सुविधाएं दो, यू कैन प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज बट डोंट गिव देम इंडिपेंडेंसी, दे कैन नॉट सर्वाइव हैप्पीली। आप चिड़ियों को पकड़ के घर में रखते हैं, सोने के पिंजरे में रखें या लोहे के पिंजरे में रखें, बढ़िया बढ़िया खाना दें, कितना भी उनके साथ गाना गाएं, जैसे ही आप पिंजरा खोलेंगे वो उड़ जाते हैं, क्योंकि आजादी से उनको भूख मंजूर है पर गुलामी मंजूर नहीं है। ये उनके डीएनए में है, ये इंसान के नहीं, हर प्राणी की खून में ये है, ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो उसका नेचर है। वो आजादी व फ्रीडम उसका पहली जरूरत है। इसीलिए दुनिया भर में पढ़े लिखे लोगों ने जब जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव किया, पहले लोगों को सजा के लिए मार देते थे, हाथ पैर काट देते थे, आंख फोड़ देते थे वगैरह वगैरह, जब समझदार लोगों ने ये सिस्टम बनाई कि हम पनिश भी करें, जो क्रिमिनल है जो अपराधी है उसको सजा भी दें पर उसमें क्रुएलिटी ना हो, तो सबसे यूनिवर्सियल जो सजा मिली वो है कि लोगों को जेल में डाल दो। और आपको पता है तो जेल में तो आजकल बड़े मजे वैसे ही आते हैं, पहले तो थोड़े जेल में थोड़ी बहुत कुछ डर लगता था क्योंकि वहां बहुत पिटाई होती थी, मार काट करते थे, फिजिकल बहुत काम कराते थे। अब तो जेल के बारे में सुनते हैं बड़ा मजा आता है, यहां योगा भी कराते हैं, आपसे काम भी बढ़िया, अच्छे अच्छे चीजें सिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, वहां स्पोर्ट्स भी होता है, सब कुछ होता है। गरीब घर के बच्चों के लिए गरीब लोग तो सोचता है कि तो कुछ छोटी मोटी क्राइम कर दूं, जेल में रहूं, वहां बढ़िया खाना मिलता है, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर फट से आ जाता है। पर उसके बावजूद भी कोई जाना क्यों नहीं चाहता है, क्यों जेल जाना एक पनिशमेंट है और हर आदमी घबराता है। हमारे देश में तो आप कल्पना नहीं कर सकते भाई, हमें तो बढ़िया खाना पीना सब कुछ मिलता है, हमें हम क्यों सोचे कि जेल जाए। पर आप अपने देश भारत के बारे में सोचिए, जहां आज भी कम से कम वो देश की आंकड़ा मत देखिए, सरकारी आंकड़ा, सरकारी आंकड़े में तो 30 रुपए जो रोज कमा लेता है, जिस फैमिली में 30 रुपीज पर डे कमा लेते हैं वो धनी बन जाते हैं। अब एक किलो चावल का कीमत भी 30 रुपए नहीं होता है, वो सब धनी माने जाते हैं। वैसे करीब करीब अबाउट 55-60% लोग गरीब है। गरीब का मतलब अमेरिकन टाइप का गरीब नहीं है, जिनको रोज एक टाइम खाने को नहीं मिलता है, खाना जिनके लिए लग्जरी है, ध्यान दीजिएगा, जिनके लिए रोज दो टाइम का खाना एक लग्जरी है, वो भी नहीं चाहता है कि मैं जेल जाऊं। क्यों? क्योंकि भूखा घर में रहना मंजूर है, अपनी फ्रीडम को खोना ये ह्यूमन बींग नहीं, किसी भी लिविंग बींग के लिए मंजूर नहीं है, सिवाय बहुत कोई स्लेवरी माइंड का हो, बहुत ज्यादा दास प्रवृत्ति का हो, वो अलग बात है। जिसका दिमाग का स्क्रू बहुत ज्यादा ढीला हो वो अलग बात है।
एक आम सीधा साधा इंसान कितना गरीब हो कुछ भी हो, जबकि उसको पता है कि जेल में आजकल बड़ा अच्छी अच्छी सुविधाएं, तब भी नहीं जाना चाहता। आप अपने घर में अपने बच्चे को करके देखिए, मैं बहुत बार आपसे बोला, आप बच्चे को अगर बोलो कि 2 घंटे तक आपको बाथरूम नहीं जाना, वो 2 घंटे में 5 बार बाथरूम जाने के लिए डिमांड करेगा। वैसे तो वो 8 घंटे तक बिल्कुल ना बाथरूम जाए, पर क्योंकि आपने 2 घंटे के लिए जो आपने उस पर बैन लगाया, वो 2 घंटे में उसको सुसु लगना ही लगना है। ये रिवोल्ट करता है, वो खुद नहीं करता है, उसके अंदर से आता है वो रिवोल्यूशन कि मेरी जो आजादी है उसके खिलाफ है ये। आप बच्चे से जो काम कराना चाहे आप उसको उस चीज के लिए डिक्टेट करें कि आप ये कर नहीं सकते हो, वो वही करने की कोशिश करेगा। छोटे से बच्चा भी रिवोल्ट करता है जब आप उसके नेचुरल फ्रीडम को बंद करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र जो फ्रीडम या इंडिपेंडेंसी की जो शब्द है हमारे यहां, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब कंट्रोल। जहां मैं अपने आप को ही कंट्रोल करूं वो अलग बात है कि पॉलिटिकली तो हम सोशियली हम स्वतंत्र हैं, पर कभी कभी थोड़ा स्पिरिचुअली अगर आप जाएं साइकोलॉजिकली देखें तो हम बहुत मामले में स्लेव बनना पसंद करते हैं, या हमारा वो एटीट्यूड या नेचर बन चुका होता है किसी दूसरे के ऑर्डर लेना। कभी कभी हम वो अपने हैबिचुअल पोटेंसी एक आदत बना चुके हैं। पिछले बार हम संस्कारों की बात कर रहे थे, वो संस्कार यही है कि जो इंद्रियों के सेंसेस के नीचे या मन के नीचे रहने की जो आदत पड़ चुकी है, जो डिपेंडेंसी हमारी आ चुकी है, मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे ये नहीं देखना चाहिए पर नहीं खाना चाहिए, पर मेरा जीभ और आंख जबरदस्ती करते हैं कि ये मुझे देखना है खाना है, तो मैं सरेंडर कर जाता हूं अपने आंखों के सामने जीभ के सामने। मैं वो चीजें खाता हूं जो मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं वो चीजें देखता हूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। इवन मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि उसकी क्या खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बावजूद भी वो मेरे से होता है। ऐसे व्यक्ति भी अननोइंगली वो डिपेंडेंट होता है, वो अपनी फ्रीडम को खो देता है, आजादी को खो देता है। जैसे जो ड्रग लेने वाला व्यक्ति है, जो अल्कोहलिक है, जो एडिक्टेड हो चुका है किसी चीज के, वो एडिक्शन भी उसकी फ्रीडम को चिंता है। अब वो खुद सोच, अब वो फ्री होकर सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, वो जैसा ड्रग बिना मिले वो तिल मिलाने लगता है। तो कभी कभी हम आर्टिफिशियली अपने अंदर वो डिपेंडेंसी, वो स्लेव नेचर क्रिएट करते हैं और फिर हम उसका मजा लेने लगते हैं। अगर कोई डिपेंड होकर के मजा लेने लगता है, मत सोचिए कि वो उसका नेचर है, वो उसका एडिक्शन है। जैसे ड्रग या अल्कोहलिक अल्कोहल लेने पर व्यक्ति धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाता है और वो बिना ड्रग, उसको लगता है कि ड्रग लेने पर ही मजा आता है, ना लो तो बेचैन होता है। इट्स नॉट ए नेचर, इट्स नॉट नेचुरल। ये हमने अपने आप कल्टिवेट किया है, इतना ज्यादा किया है कि अब हमें लगता है कि यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम सब बड़े फ्री हैं। मेंटली बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हो, एकेडमिशियंस हो, खास करके मेरा मतलब है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोचते हैं कि हम अपने इंटेलेक्ट यूज करते हैं प्रोफेशनली, आप उनको भी देखेंगे, अल्दो वो ये सोचते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट है, पर वो मेंटली बहुत सारे लोग स्लेव होते हैं। कोई रिलीजन के नाम पर स्लेव है, कोई किसी सोशल फिलॉसफी के नाम पर स्लेव है कि मैं तो सोशलिस्ट हूं, मैं तो लेफ्टिस्ट हूं, मैं तो लिबरल हूं। तो ये एक तरह का भी गुलामी होती है, आप किसी फिलॉसफी के भी गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को, फ्रीडम का पहला शर्त है कि एवरीथिंग इज ओपन। वो ओपननेस अगर खत्म हो गया तो आप लिबरल है या कंजर्वेटिव है, यू आर ए स्लेव, स्लेव ऑफ योर थॉट, नॉट योर, इट इज नॉट योर थॉट। किसी के किताबें पढ़ा, किसी को देखा, किसी पार्टी में ज्वाइन किया, किसी रिलीजियस सेक्ट को आपने ज्वाइन किया और धीरे धीरे आप एडिक्टेड होते गए और आपने कहा कि मैं तो ऐसा हूं। आप अपनी जो स्लेवरी को बड़े प्राउडली रखते हैं कि दूसरा आप पर ब्लेम ना कर दे। इवन ए लिबरल पर्सन इज ए स्लेव व्हेन ही सेज दैट आई एम ए लिबरल। और आप लिबरल लोगों को देखेंगे क्या करते हैं जी, खास करके भारत में तो हम देखते हैं, टेररिस्ट को सजा हो जाए तो सबसे पहले झंडा उतार करके खड़े हो जाएंगे लिबरल लोग। ह्यूमन राइट कहां गया? अब इनको यह नहीं दिखता कि जेल में रोज लाखों अनपढ़ गरीब लोग बिना किसी क्राइम के पुलिस ढकेल देता है, सड़ सड़ के मरते हैं, कोई ह्यूमन राइट वाला, कोई लिबरल वाला झंडा लेकर के नहीं आता है। जैसे ही कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए जी, सारे ह्यूमन राइट आ जाता है इन द नेम ऑफ लिबरलिज्म। उनको भी हक मिलना चाहिए। तो स्वतंत्रता का सिर्फ यह नहीं कि हम पॉलिटिकली स्वतंत्र हो, स्पिरिचुअली भी स्वतंत्रता का अनुभव हो, मेरे पास वो स्कोप हो कि कोई भी अच्छा विचार दुनिया में कहीं से मिले तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं, अडॉप्ट कर सकूं। अगर नहीं है तो भी हम भी किसी ना किसी के स्लेव बनते जाते हैं। स्वतंत्रता इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इट इज टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल्स इन्फ्लुएंसेस एंड एक्ट अंडर वन्स ओन विल। It thus stands for the notion of independence or freedom. जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डे की, उसमें तीन चार चीजें हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। There are three, four aspects of Independence Day. One is freedom, one is self-rule, self-governance. Another is patriotism, जिसको आप देशभक्ति कहते हैं। ये तीनों मिलके आपके देश को आजाद बनाता है। आप किसी भी देश के हैं, आप किसी के भी सिटीजन हैं, आप किसी के भी भला करना चाहते हैं, ये तीन चीजें उसमें मैटर करता है कि आप अपने आप को फ्री महसूस करें, आपको सेल्फ गवर्नेंस की पूरी एटमॉस्फेयर हो और आपके अंदर वो पेट्रियटिज्म हो। अगला जो चर्चा हम थोड़ी बहुत उसके एक दूसरे एस्पेक्ट है, स्वराज्य। जब देश की आजादी की, भारत की देश की आजादी की लड़ाई हुई, जो सबसे प्रसिद्ध शब्द, जो सबसे पॉपुलर वर्ड यूज हुआ वो था स्वराज। स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर आर्य समाज के संस्थापक, ऋग्वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त, एक चैप्टर है स्वराज्य सूक्त। उसे हर मंत्र के आखिर में, एंड में एक लाइन आती है, अर्चन्नो स्वराज्यम, मैं उस स्वराज्य की अर्चना करता हूं। खैर उसका कंटेक्स्ट अलग है, उसका मीनिंग अलग है। तो स्वामी दयानंद उस ऋग्वेद के स्वराज्य के कंसेप्ट को ब्रिटिश इंडिया में पॉपुलराइज किया, ये जो स्वराज है ये हमारा नेचर है। जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब होता है बर्थ राइट। बर्थ राइट का मतलब इट्स आवर नेचर। आप हमारे उस नेचर को छीन नहीं सकते हो। वो हर चिड़िया का, पशु का, पक्षी का, इंसान का, कोई भी सेंटिएंट हो, लिविंग बींग हो, वो उसका राइट नहीं, वो उसका नेचर है। आप नेचर को कैसे छीन सकते हो? सेल्फ रूल। बाल गंगाधर तिलक से लेकर के महात्मा गांधी तक जो स्वराज का कंसेप्ट है बहुत फेमस रहा। ये ठीक है, स्वराज का मतलब होता है कि सेल्फ रूल, पर सेल्फ रूल का मतलब ये नहीं है कि विदेशी शासक चले जाएं और देशी, मेरे देश के लोग मुझे, मेरे ऊपर शासन करें। गोरे चले जाएं और ब्राउन कलर के लोग मेरे ऊपर शासन करें। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो स्वराज शब्द ज्यादा चला, उसका सिर्फ यही मतलब नहीं था कि ब्रिटिश लोगों को भगाना था। उसका यह भी मतलब था कि जो सेल्फ गवर्नेंस हो वो भी लोगों के अंदर पैदा हो, खुद को कंट्रोल करने की, खुद को रेगुलेट करने की पहली शर्त है। अगर हम खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते, खुद का राज, खुद पर हम राज नहीं कर सकते, तो फिर हम दूसरों पर, अपने पूरे सोसाइटी पर कैसे राज करेंगे? खुद पर राज का मतलब, जैसे मैंने कहा, अगर मैं अपनी इंद्रियों का सुनता हूं, मैं अगर अपने सेंसेस का स्लेव हूं, मैं अगर अपने माइंड का स्लेव हूं, तो फिर मैं कैसे डिमांड करूं कि मुझे पॉलिटिकल गवर्नेंस चाहिए? इसलिए ऋग्वेद में जो स्वराज्य है, सेल्फ रूल, उसका सिर्फ मतलब है कि मैं खुद को गवर्न कर पाऊं। ये सेंसेस, ये माइंड, ये मेरे टूल्स होंगे, ये गवर्नमेंट होगा, ये गवर्नमेंट मिशनरी होंगे अपने को चलाने के लिए। पर दे शुड नॉट बी रूलर ऑफ माई सेल्फ। वो मेरे लिए रूलर नहीं हो, मेरे इंद्रियां, मेरे मन, मेरी आत्माएं, वो मेरे गवर्नमेंट मिशनरी होंगे। रूल तो मैं खुद पर करूं, पर जनरली हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जो कर जाते हैं, जो स्वराज्य को पा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन, परमात्मा को प्राप्त कर गया, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। बड़े मजेदार बात आपको बताते हैं, ये जो फ्रीडम शब्द है, आजादी, इसको संस्कृत में बोलते हैं मुक्ति। और जो जिस आजादी के लिए ऋषि मुनि लोग तपस्या करते, उसको भी मुक्ति ही बोलते हैं, है ना? कोई पॉलिटिकली फ्रीडम चाहता है, तो कोई स्पिरिचुअली फ्रीडम चाहता है। जब मैं स्पिरिचुअली फ्री होता हूं, तो मैं एनलाइटेंड होता हूं। और जिस देश में जितना ज्यादा लोग स्पिरिचुअली फ्री होंगे, उतना वो देश ज्यादा सुंदर, सुंदर इन द सेंस, उतना सिविलाइज्ड, उतना अच्छा बनेगा। इट इज अ सीजलेस सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस। जैसे जैसे मेरे अंदर की बुराइयां, अपनी खराब चीजें हटता जाएगा, उतना मेरे अंदर वो सेल्फ रिलायंस भी आता जाएगा। इन सच ए स्टेट स्वराज्य इज अचीव्ड, एवरीवन इज हिज ओन रूलर। तो जो सही ऋषि होता है, मुनि होता है, जो रियल सन्यासी होता है, इज एक्चुअली सेल्फ रूलर। वैसे आजकल ढूंढने पर नहीं मिलेगा ऐसा कोई सन्यासी। मत सोचिएगा ये जो सो कॉल्ड सन्यासी है, दे आर सेल्फ रूलर। दे आर रूल्ड बाय यू, योर मनी, योर डिवोशन, योर फॉलोअरनेस। आपकी, वो आपके चीजों से वो रूल्ड होते हैं। वो दिखाते हैं कि हम सन्यासी हैं। नेवर थिंक देम दे आर सन्यासी। मैं उस रियल सन्यासी की बात करता हूं जो सेल्फ रूलर है, जो खुद पर खुद शासन करता है, दुनिया की किसी भी चीज को, पैसा हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति, किसी को भी हावी होने नहीं देता। वो जब भी डिसीजन लेता है वो बिल्कुल प्योर डिसीजन होता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। इसीलिए जब भी हमारे यहाँ जो सन्यास की दीक्षा होती है ना, जो लोग सन्यासी बनते हैं, मोक बनते हैं, जब उनकी दीक्षा, दीक्षा का मतलब जब का इनिशिएशन होता है, जिस दिन उनको सन्यास लेना होता है, एक संस्कार होता है, सेरेमनी, जैसे आप लोग शादी की संस्कार करते हैं, तो संस्कार में उनको तीन वाउज लेने होते हैं, तीन संकल्प करना होता है, तीन प्रॉमिस करना होता है। क्या? कि मैं आज से इन तीन चीजों से मुक्त होऊंगा, मुक्ति, ध्यान दीजिए, फ्री, स्वतंत्र होऊंगा। तो क्या चीज? मैं आज से किसी भी तरह का लोकेशन नहीं रखूंगा, मतलब आज से मेरा कोई भी काम नेम और फेम के लिए नहीं होगा। ये बाबा ढूंढ के दिखाइए कि वो तो अब लिखते हैं कि कल तक तो थे अमुक गुप्ता शर्मा जो भी थे, अब तो हो जाए 108 श्री 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 श्री, पता नहीं आपके तो एक श्री लगते हैं उनके 108, अब तो बाबा लिखने लगे 1008, अब 1008 आप तो कुछ लोग लिखते हैं अनंत श्री, मतलब अनलिमिटेड इन्फिनिट श्री। वो कितनी एरोगेंसी बढ़ती जा रही है। पर जब जब प्रॉमिस करते हैं उस दिन वो बोलते हैं कि आज से कोई भी मेरी एक्टिविटीज लोकेशना से मुक्त होगा, नेम और फेम से मुक्त रहेगा, वित्तेषणा, मेरा कोई भी काम पैसे के दृष्टि से मुक्त रहेगा, उसके उसका कोई पर्पस नहीं होगा कि इसके द्वारा पैसा आए। और पुत्रेषणा, मैं कोई भी एक्टिविटी करूं उसमें किसी भी लेश भर का, छोटी सी भी, कहीं मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहेगा कि इसके द्वारा मैं कोई संतान बनाऊं, कोई मेरे फॉल, जो जिसको कहते हैं, कोई मेरी जिम्मेदारी संभालने वाले आगे आए। जैसे माँ बाप होते हैं तो वो चाहते हैं हमारे बच्चे आए जो हमारे फैमिली लिंक को बढ़ाएं, वो शिष्य हो, पुत्र हो। इसीलिए जब मैं सन्यासी की बात करता हूं, प्लीज ये घूमने फिरने वाले सन्या, वो सोने के सिंहासन या लोहे के सिंहासन या आपके सोफे पर बैठने वाले बड़े बड़े बाबाओं की बात नहीं करता हूं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आज के जमाने में रियल सन्यासी कहां मिलते हैं? इट्स नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाऊं, पर बी द कॉसेस अबाउट साधुज एंड सन्यासी। तो जो रियल सन्यासी है वो स्वराज्य को प्राप्त किया होता है, सेल्फ रूलिंग को। इसी तरह जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, ये तो हो गया इंडिविजुअल, जब आप कम्युनिटी में जाते तो आपका गांव, आपका देश, जहां आपका देश आपके लोगों के द्वारा चालित हो, आपका गांव आपके गांव के लोगों के द्वारा चालित हो, मैं अपने द्वारा चालित हूं, मेरी कम्युनिटी मेरे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा चालित हो, वो स्वराज्य है, जिसमें बाहरी इन्फ्लुएंस ना होता हो किसी भी तरह का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड स्वराज्य। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ये जो राष्ट्र की कल्पना है, द परसेप्शन ऑफ नेशन कैसे बना। वेस्टर्न लोग कहते हैं ये इंडिया वालों को हमने सिखाया नेशनलिज्म, यूनिटी हमने दी। ये देखिएगा ऋग्वेद का या अथर्वेद का मंत्र है, और कम से कम तो 5-7 हजार 8 हजार साल पहले, कम से कम तो ब्रिटिश तो तब तक कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, मांस को पकाकर खाते हैं ये भी उनको पता नहीं था, कच्चा खाते थे, ये उन दिनों की बात है। भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रे ततो राष्ट्रम, राष्ट्र शब्द देखिएगा, बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। जब हमारे ऋषियों ने अनुभव किया कि हमें भी भद्र चाहिए, डिजायरस पर ओएल, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे घूम फिर कर नहीं जी सकते, अब जिन्होंने प्रकाश को, ज्ञान को पाया था, जिनको जो ज्ञानी बन चुके थे, एनलाइटेंड थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने खूब तप किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत दीक्षा ली। दीक्षा का मतलब होता है वाउज लिया। वो जो दीक्षा और तप के कारण जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने क्रिएट किया, वो क्या था? राष्ट्र, द कंसेप्ट ऑफ नेशन। और वो नेशन का कंसेप्ट क्यों था? क्योंकि वहां हर आदमी सुखी हो सके। क्योंकि जब आप इंडिविजुअली होते हैं ना, तो फिर आपका प्रोटेक्टर कोई नहीं होता है। एक दूसरे को, मैं एक अच्छा खेती करता हूं, मेरे पास धान गेहूं बहुत है, तब भी मैं भूखा मरता हूं। क्यों? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वो धान गेहूं को चावल में, आटे में कन्वर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है। आप बड़े अच्छे लोहे का काम करते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक दूसरे को हेल्प करने की एक कम्युनिटी की जरूरत है, जहां हर कोई, हर किसी को किसी की फायदा मिले, और एक रेगुलेशन रेगुलेशन हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल लव हो। वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी, वो बड़े रूप में राष्ट्र की अवधारणा लेता है। पर वो राष्ट्र में दो चीजें जरूरी होती है, बल और ओज, फिजिकल और मेंटल पावर चाहिए। जिस देश में सैनिक मजबूत ना हो और इंटेलेक्चुअल अच्छे ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देवियों सज्जनों, आपको दो चीजें चाहिए, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए और अच्छे पावरफुल लोग भी चाहिए, बल और ओज दोनों चाहिए। तो ऋषियों ने अपनी साधना से, अपनी मेहनत से और अपने संकल्प से जिस राष्ट्र की जो अवधारणा बनाई, जो कंसेप्ट ऑफ नेशन बनाया, उसके साथ जो ब्राह्मण शक्ति और क्षत्र शक्ति, द इंटेलेक्चुअल पावर, द फिजिकल पावर, दोनों को साथ रख के राष्ट्र बनाया। देवियों सज्जनों, राष्ट्र कोई, या कोई भी देश हो, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, कोई देश का टुकड़ा नहीं होता। इट्स नॉट ए, इट्स ए पीस ऑफ लैंड। मैं, मुझे एक छोटी कहानी याद है। बहुत बहुत साल पहले, राजीव गांधी के समय, स्कूलों में संस्कृत को हटा दिया था इंडियन स्कूल्स में। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में केस सू किया था कि संस्कृत को ना हटाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट के खिलाफ सू किया था। उसके रिजल्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, तीन तीन जस्टिस के बेंच ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट के शुरू में एक छोटी सी स्टोरी दी थी। उस स्टोरी से उन्होंने जजमेंट को शुरू किया था, 8 पेज की जजमेंट थी। वो स्टोरी कहती है, वो जस्टिस लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के समय जब ब्रिटेन इन्वॉल्व था, हर घर घर से व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था। एक सेना का बड़ा अधिकारी, एक आर्मी ऑफिसर, वैसे ही यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, किसी काम से गया था, तो देखा कि एक प्रोफेसर साहब अपने चैम्बर में बड़े शांत होकर बैठे हैं, कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो आर्मी ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, पूरे देश के लोग देश को बचाने के लिए लड़ाई में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये प्रोफेसर देखो है? इसको कोई मतलब नहीं देश के साथ, किसी बैठ के पढ़ाई लिखाई में लगा। तो उसको जाकर उसने धमकाया कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप ब्रिटिश हो करके आपको ब्रिटेन के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई पेट्रोटिज्म नहीं है, कोई नेशनलिज्म की कोई भाव नहीं है। तो उसने खूब सुनाया अपनी जो आर्मी मैन जिस स्टाइल में सुनाते हैं बड़े अकड़ के साथ, प्रोफेसर साहब सुने, सुनने के बाद पूछा उस आर्मी ऑफिसर को, आप किसके लिए लड़ रहे हो? बोले ब्रिटेन के लिए। बोले ये ब्रिटेन क्या चीज होता है? बोले हमारा देश है, यही तो पूछ रहा हूं, आप किसको देश ब्रिटेन कहते हो? इस जमीन के टुकड़े को? बोले यस। बोले जमीन का टुकड़ा का मतलब ये जो पहाड़ है, नदी है, नाले है, तो फिर क्या फर्क है जर्मनी के जमीन के टुकड़े में, फ्रांस की जर्मन की जमीन के टुकड़े में, जापान की जमीन के, सबके जमीन के टुकड़े तो एक ही जैसे होते हैं, इसको बचाकर क्या करेगा, इसको फैलाकर क्या करेगा? कल सारा यूरोप ब्रिटेन हो जाए या सारा ब्रिटेन यूरोप हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो जमीन है। उसको समझ में नहीं आया। तो प्रोफेसर साहब ने बताया, देखो जिसको आप नेशन कहते हो, नेशन जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। उस जमीन के टुकड़े में रहने वाले जो लोग, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनके सिविलाइजेशन, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, हर चीज को मिलाकर जो नाम बनेगा उसका नाम होता है नेशन। आप देखिए भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है जमीन की दृष्टि से। उनके जमीन में भी कुछ फर्शाइल जमीन होते हैं जो उपजाऊ होते हैं, जहां गेहूं पैदा होता है, हमारे यहां भी गेहूं धान पैदा होता है। उनके वहां भी पहाड़ है, हमारे यहां भी पहाड़ है, उनके यहां भी नदियां हैं, हमारे यहां भी नदियां हैं। तो जमीन में क्या अंतर है कि आप अपनी जमीन को के लिए लड़ोगे, वो अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे? शासन कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है? जब आप नेशन कहते हो, कंट्री कहते हो, वो एक उस जमीन के टुकड़े के साथ जो फीलिंग जुड़ी है, जो जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो ट्रेडिशन है, उस कल्चर में आपका सब कुछ आ जाता है, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, वो सबका जो एक कंबिनेशन है वो नेशन है। अगर यही देश है तो तुम देश के लिए भी जितना मेहनत करके लड़ते हो, मैं भी उतने ही मेहनत करके लड़ता हूं। फर्क है कि तुम बंदूक पकड़ करके तुम सरहदों पर लड़ते हो, बॉर्डर पर लड़ते हो, और मैं ऑफिस के कमरे में बैठ करके कलम पकड़ के लड़ता हूं। तुम ऐसे एक नालायक, एक मूर्ख देश को आजाद करके क्या पाओगे जहां कोई पढ़ा लिखा आदमी ना मिले? ऐसे देश को आजाद करके क्या होगा जहां के आदमी मूर्ख हो, जहां कोई प्रॉस्पेरिटी ना हो, जहां कोई इंटेलेक्ट ना हो? इसीलिए तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, दोनों का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। ये मत सोचो कि तुम बंदूक चला के ज्यादा पेट्रियोटिक हो, मैं कलम लिख करके कम पेट्रियोटिक हूं। तो जस्टिस ने यहीं से शुरू की थी कि संस्कृत क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, वो अलग विषय है। तो मतलब है कि जब आप देश की बात करते हैं तो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं। इसलिए जैसे अभी बात हो रही थी कि हम दूसरे देश में रह करके कैसे फील करें, आप जमीन को छोड़ चुके हो, प्रोफेशनली मजबूरी है वो अलग बात, पर वो संस्कृति, वो भाषा, वो जो माइंडसेट, वो सब कहां? अभी तो उसी के अंदर है, उसी के लिए लड़ और आप कर रहे हैं। सिर्फ हम, आप इंडियन लोग नहीं कर रहे, कौन नहीं करता? भारत में 400 साल से ब्रिटिश हैं, दो चार गिने चुने। मैं भी कल किसी टीवी चैनल में देख रहा था, परसों वो दो चार ब्रिटिश जो बहुत पुराने वहां रह रहे हैं, या अभी अभी आकर के वहीं सिटीजन से भारत के ले रखे हैं, कोई जर्नलिस्ट था, कोई कुछ था, वो टीवी चैनल में इंडिया के सिटीजन है पर ब्रिटिश इंडियन है, वो अभी भी प्राउडली बोलते हैं वो इंडिया जो कुछ है ब्रिटेन के कारण है। इसीलिए आप शेम फील मत करिए अगर अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आप इंडियन होने का प्राउड फील करते हैं। सब करते हैं जी, कौन नहीं करता? अगर 400 साल से हिब्रू यहां रहे, ये ज्यूस यहां रह करके भी वो इजराइल के लिए ही लड़ते हैं, इजराइल के लिए ही कमाते हैं, इजराइल के लिए ही यहां पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप तो 30 साल से, अभी तो आप आए ही हो, वो तो 10-10 पीढ़ी से ही आए। उन्होंने बहुत सारे जीवस हैं जिन्होंने इजराइल देखा भी नहीं है, वो इजराइल के लिए यहां बैठ के लड़ते हैं। अरे आप 20 साल हुए आए नहीं कि आपको लगता है प्योर इंडियन बन गए, प्योर अमेरिकन बन गए। इसीलिए उस ये नहीं कि ये कोई जमीन के टुकड़े की बात, आप यहां रहकर भी वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं जब आप उस देश की भाषा को, संस्कृति को, सभ्यता को यूज करते हो और बढ़ाते हो। ये इनडायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्टली अपनी जिस देश के प्रति आपका प्यार है, जिसको आप मातृभूमि बोलते हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो कहीं भी रहो। आपको एक मजेदार बात बताएं जी, आजादी की लड़ाई में जितने भी बड़े बड़े आजादी के सैनिक रहे, वो महात्मा गांधी से लेकर के किसी का भी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो 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 शांति दल के हैं या जो क्रांति दल के हैं, कोई भी हो, वो मोस्ट ऑफ देम जो थे वो ब्रिटेन में ही रहे हैं। ज्यादातर जो जो स्ट्रेटेजी बनी है वो लंदन में ही बनती थी, उनमें बहुत सारे ब्रिटिश सिटीजन भी थे। और ये सिर्फ हम नहीं, दुनिया के हर देश में ये होता है। आपकी जिस मातृभूमि है उसके प्रति भावना कोई नहीं छीन सकता। थोड़ी सी बात रही देशभक्ति के ऊपर, पैट्रियोटिज्म, एक दो मिनट करके आप समाप्त करते हैं। देशभक्ति का बहुत सारे लोग इसमें सवाल भी उठाते हैं, जैसे लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोग होते हैं, वो नेशनलिज्म के बड़े खिलाफ हैं, कहते हैं इसके कारण टेररिज्म फैलता है वगैरह वगैरह होता है। पर ये पेट्रोटिज्म ना हो तो अमेरिका अमेरिका ना बने सज्जनों देवियों। जिस अमेरिका को आज आप देखते हो, वो जो एक्सक्लूसिवनेस है अमेरिका में, देखिए ये भी ब्रिटिश, ब्रिटेन का ही गुलाम था, ब्रिटेन भी यहां राज करता था। अरे ये लोग भी ब्रिटिश ही हैं जी, ये भी यूरोपियन है, इन पर शासन करने वाले भी यूरोपियन थे, ब्रिटिश थे। ये ब्रिटिशों को भगाया, पर उनके पास अपनी लैंग्वेज थी नहीं, क्योंकि तो खुद ही ब्रिटिश थे, अंग्रेजी लैंग्वेज थी। लैंग्वेज को चेंज कर डाला जी, अंग्रेजी तो रखी पर अलग अमेरिकन इंग्लिश। हम तो सीधे के सीधे, हमारा कोई लेन देन ही नहीं था अंग्रेजी के साथ, और भारत का बच्चा बच्चा को जबरदस्ती थोक थोक के अंग्रेजी कहा जाता है, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश। अरे इनकी भाषा ही अंग्रेजी थी, ब्रिटिश से अलग दिखने के लिए चेंज, डिक्शनरी तक बदल डाला, स्पेलिंग तक बदल डाला। आपके रोड के आने जाने से लेके ताला भी आप लगाते हैं ना, वो चाबी ऊपर होता है यहां नीचे होगा। ऐसा कोई चीज नहीं जिन्होंने ब्रिटिश सिस्टम का उल्टा ना किया हो। वो एक्सक्लूसिवनेस जब आता है ना, तो अनजाने में आपको पता ही नहीं लगता आपका देश कितना महान बन जाता है। ऐसे आसानी से नहीं आता है। इजराइल जब पहली बार बना, जी उस लोगों को तो अलग अलग भटक रहे थे, अलग अलग देशों में मार काट करके उनको मुसलमानों ने भगाया, क्रिश्चियन ने भगाया, वो जो क्या कहते हैं, जो इजिप्ट के उन दिनों राजा थे उन्होंने भगाया, वो जीवन भर भटकते रहे। बाद में जब उन्होंने इकट्ठा होकर के जेरूशलम के आसपास के एरिया को अपने देश के रूप में, आज तक भी वो बेचारे अपने देश को ठीक से नहीं बना पा रहे हैं जो इजराइल बनाया। सबसे बड़ी उनके लिए समस्या थी क्योंकि वो अलग अलग देशों में रहते थे और हजारों सालों से रहते थे। भारत में भी 2000-2500 साल से ज्यूस हैं। कोई फ्रेंच ज्यूस था, कोई इंडियन था, कोई अलग अफ्रीकन था, अलग अलग देशों में थे, उनको इजराइल बनानी थी। सबसे पहली जरूरी बात थी कि हमें एक भाषा चाहिए जो हमारी भाषा हो, पर इजराइल की ज्यूस की अपनी कोई भाषा नहीं थी उस समय, क्योंकि सब अलग अलग भाषा देशों में रहते थे, कितने पीढ़ियों से रहते थे, तो उनके पास कोई भाषा नहीं थी। उन्होंने खोजा, उनके इंटेलेक्चुअल लोगों ने, आपको पता है जो भाषा मिली वो पत्थरों की, जो पहाड़ियों में लिखे गए पत्थरों में खोदे गए लिपियों से उनको पता चला उनकी हिब्रू भाषा। उस पत्थर की खुदाई की भाषा सिर्फ थी, कोई बोलने वाला समझने वाला कुछ नहीं था। उस लिपि को दोबारा रिवाइव किया, उसकी स्क्रिप्ट को, उस भाषा को दोबारा रिवाइव किया। और आज ये कुछ लाखों लोग नहीं होंगे, ये इजराइल लोग, और आज यूएनए की एक भाषा के रूप में हिब्रू मानी जाती है। एक मरी हुई पत्थरों में छिपी हुई भाषा को भी वो अपने उस पैट्रियोटिज्म के कारण उठाकर लाए और दुनिया के पटल पर रखे। और एक भारत लोगों को देखिए, जहां भगवान ने उनको सैकड़ों भाषाएं दी है, दुनिया की सबसे प्यारी, दुनिया की सबसे प्रॉस्परस संस्कृत भाषा दी, और वो हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, दुनिया के बहुत सारे भाषाओं से बड़े समृद्ध है, पर बहुत कम लोग मिलेंगे जो उसको बोलते हुए भारत में भी मिलते हैं, और बोलते भी हैं तो कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स के साथ बोलते हैं। फिर रोते फिरते हैं, क्यों हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे, तुम कब बोलते हो, और बोलते भी हो तो कितनी कॉम्प्लेक्स के साथ बोलते हो, क्यों शिकायत करते हो मेरा बच्चा हिंदी नहीं सीखता, मैं तो बोलता हूं, पर तुम्हारे बोलने के पीछे जो फीलिंग है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई प्राइड नहीं है। तो बच्चे को पता लग जाता है मां बाप के शक्ल से जब वो हिंदी, गुजराती, मराठी बोलता है। और जिस घर में अपनी भाषा को बड़े प्राउडली बोलते हैं वो बच्चे भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो पैट्रियोटिज्म ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद करने से आता है, अमेरिका जिंदाबाद और रूस, सोवियत रूस मुर्दाबाद करने से आता है। मैं जहां भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, जो भी करता हूं, अगर मैं उसको ईमानदारी से करता हूं, मेरे कर्म के, मेरे हर एक्टिविटीज के साथ मैं देखता हूं इसमें देश को क्या नुकसान है, फायदा है, तो अपने और मेरे पास जो संस्कृति है, भाषा है, धर्म, जो कुछ भी, उसको अगर मैं अपने प्राउडली बिहेव यूज करता हूं और उसको मैं एक्सक्लूसिव बना सकता हूं, तो देखिए आपका देश और आप कितने धनी, कितने समृद्ध और कितने महान बन सकते हैं। तो भगवान करें ये स्वतंत्रता दिवस हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल स्वतंत्रता भी लाएं, हमारा देश समृद्ध बने। जो बड़े बड़े त्यागियों के कारण जिन्होंने बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया, हजारों लाखों लोगों के बलिदान के कारण जो देश हमको मिला है, देश का मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं, वो सभ्यता, वो सिविलाइजेशन, वो हम जहां भी दुनिया में रहें उसको हम बढ़ा सकें, हमारा भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो। इसी के साथ आपको दोबारा बहुत बहुत भारत के स्वाधीनता दिवस पर बधाई। ओम शांति।